का था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियों से एक कहानी, यक्ष युधिष्ठिर संवाद का दूसरा एवं अंतिम भाग।
यक्ष ने प्रश्न किया, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष ने पूछा, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर ने कहा, माया। यक्ष ने पूछा कि माया क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, नाम और रूप धारी नाशवान जगत। यक्ष ने पूछा, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ब्रह्म। यक्ष ने पूछा, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। यक्ष ने पूछा, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर ने कहा, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील ना हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने प्रश्न किया, स्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष ने प्रश्न किया, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति में ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने पूछा, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, संतान को कोख में धरने वाली मां भूमि से भी भारी होती है। यक्ष ने पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, पिता। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। यक्ष ने प्रश्न किया कि घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, चिंता। यक्ष ने पूछा, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, विद्या। यक्ष ने पूछा, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्नी। यक्ष ने पूछा, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने पूछा, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर ने कहा, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष ने पूछा, सुख क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। यक्ष ने पूछा, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष ने पूछा, किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध। यक्ष ने पूछा कि किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने कहा, लालच को खोकर। यक्ष ने पूछा कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, ये देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। यक्ष ने प्रश्न किया, कौन व्यक्ति आनंदित या सुखी है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे जलचर, यानी जलाशय में निवास करने वाले यक्ष, जो व्यक्ति पांचवें छठे दिन ही सही अपने घर में शाक सब्जी पकाकर खाता है, जिस पर किसी का ऋण नहीं है और जिसे परदेश में नहीं रहना पड़ता है, वही मुद्रित सुखी है। यदि युधिष्ठिर के शाब्दिक उत्तर को महत्व ना देकर उसके भावार्थ पर ध्यान दें, तो इस कथन का तात्पर्य यही है कि जो सीमित संसाधनों में या सीमित संसाधनों के साथ अपने परिवार के बीच रहते हुए संतोष कर पाता हो, वही वास्तव में सुखी है। यक्ष ने प्रश्न किया, इस सृष्टि का आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यहां इस लोक से जीवधारी प्रतिदिन यमलोक को प्रस्थान करते हैं, यानी एक एक करके सभी की मृत्यु देखी जाती है, फिर भी जो यहां बचे रह जाते हैं वे सदा के लिए यहीं टिके रहने की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य भला और क्या हो सकता है? तात्पर्य ये है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है और उस मृत्यु के साक्षात्कार के लिए सभी को प्रस्तुत रहना चाहिए। किंतु हर व्यक्ति इस प्रकार जीवन व्यापार में खोया रहता है जैसे कि उसे मृत्यु अपना ग्रास नहीं बनाएगी। यक्ष ने प्रश्न किया, जीवन जीने का सही मार्ग कौन सा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जीवन जीने के असली मार्ग के निर्धारण के लिए कोई सुस्थापित तर्क नहीं है। श्रुतियां भी भांति भांति की बातें करती हैं। ऐसा कोई ऋषि चिंतक विचारक नहीं है जिसके वचन प्रमाण कहे जा सकें। वास्तव में धर्म का मर्म तो गुहा यानी गुफा में छिपा है, यानी कि बहुत गूढ़ है। ऐसे में समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस मार्ग को अपनाता है वही अनुकरणीय है। बड़े लोगों के बताए रास्ते पर चलने की बातें अक्सर की जाती हैं। यहां प्रतिष्ठित या बड़े व्यक्ति से मतलब उससे नहीं है जिसने धन संपदा अर्जित की हो या जो व्यावसायिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका हो या जो प्रशासनिक अथवा अन्य अधिकारों से संपन्न हो इत्यादि। प्रतिष्ठित वह है जो चरित्रवान हो, अपने कर्तव्यों की अवहेलना ना करता हो, दूसरों के प्रति संवेदनशील हो, समाज के हितों के प्रति समर्पित हो आदि आदि। यक्ष ने प्रश्न किया, रोचक वार्ता क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, काल यानी निरंतर प्रवाहशील समय, सूर्य रूपी अग्नि और रात्रि दिन रूपी ईंधन से तपाए जा रहे भवसागर रूपी महामोह युक्त कढ़ाई में महीने तथा ऋतुओं के कलछे से उलटते पलटते हुए जीवधारियों को पका रहा है, यही प्रमुख वार्ता है। इस कथन में जीवन के गंभीर दर्शन का उल्लेख दिखता है। रात दिन तथा मास ऋतुओं के साथ प्राणी वृंद के जीवन में उथल पुथल का दौर निरंतर चलता रहता है। प्राणीगण काल के हाथ उसके द्वारा पकाए जा रहे भोजन की भांति हैं, जिन्हें एक ना एक दिन काल के गाल में समा जाना है। यही हर दिन का ताजा समाचार है। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से और भी अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। इसे प्रसन्न होकर यक्ष बोले, हे युधिष्ठिर, तुम धर्म के सभी मर्मों को जानते हो। मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ट हूं, अतः मैं तुम्हारे एक भाई को जीवनदान देता हूं। बोलो, तुम्हारे किस भाई को मैं जीवित करूं? युधिष्ठिर ने कहा, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। इस पर यक्ष बोले, युधिष्ठिर, तुमने महाबली भीम या त्रिलोकी विजय अर्जुन का जीवन दान न मांगकर नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्मात्मा पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। मेरी भीम और अर्जुन की माता कुंती थीं तथा नकुल और सहदेव की माद्री। इसलिए जहां माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, वहीं माता माद्री के भी एक पुत्र नकुल को ही जीवित रहना चाहिए। इसलिए मैंने नकुल का जीवन दान मांगा है। युधिष्ठिर के वचन सुनकर यक्ष ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे विचारों से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूं। वास्तव में मैं तुम्हारा पिता धर्म हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहां आया था। धर्म के इतना कहते ही सभी पांडव ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कि किसी गहरी निद्रा से जागे हों। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्म के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर धर्म ने कहा, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हे तात, हमारा 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हो रहा है और अब हम 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले हैं। अतः आप यह वर दीजिए कि उस अज्ञातवास में कोई भी हमें ना पहचान सके। साथ ही मुझे यह वर दीजिए कि मेरी वृत्ति सदा आप अर्थात धर्म में ही लगी रहे। धर्म युधिष्ठिर को उनके मांगे हुए दोनों वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
अभी आप सुन रहे थे महाभारत की कहानियों से एक कहानी, यक्ष युधिष्ठिर संवाद का दूसरा एवं अंतिम भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।